नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द मेकिंग ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया जर्नल्स 1985 से 1993, जॉर्डन मैकनर की निजी डायरियों, बाद की टिप्पणियों, चित्रों और विकास सामग्री पर आधारित संस्मरणात्मक पुस्तक है। यह किसी तैयार सफलता कथा का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि उस समय लिखे गए नोट्स के माध्यम से एक प्रसिद्ध एप्पल टू खेल के बनने की अधूरी, अनिश्चित और व्यक्तिगत प्रक्रिया दिखाती है। मैकनर पहले कराटेका के कारण उद्योग में कुछ पहचान बना चुके थे, पर प्रिंस ऑफ पर्शिया के निर्माण के दौरान उन्हें तकनीकी सीमाओं, आर्थिक दबाव, प्रकाशक के साथ तनाव और फिल्म लेखन की अपनी समानांतर आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। पुस्तक का मुख्य विषय केवल खेल डिजाइन नहीं है, बल्कि अकेले रचनाकार के निर्णयों की कीमत भी है। इसमें एनिमेशन के लिए रोटोस्कोपिंग, सीमित मेमोरी में डिजाइन के उपाय, प्रकाशन और विपणन की अनिश्चितता तथा आरंभिक बिक्री के बाद मिली सफलता का संदर्भ मिलता है। इसीलिए यह वीडियो गेम इतिहास के साथ साथ रचनात्मक श्रम की ईमानदार डायरी भी बन जाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, समकालीन डायरी के रूप में रचनात्मक प्रक्रिया की असुरक्षा। इस पुस्तक की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका स्रोत है। जॉर्डन मैकनर घटनाओं को कई दशक बाद सफलता के दृष्टिकोण से नहीं सुनाते, बल्कि 1985 से 1993 के बीच लिखी अपनी डायरियां प्रस्तुत करते हैं। इसलिए पाठक को हर निर्णय का परिणाम पहले से ज्ञात नहीं लगता, भले प्रिंस ऑफ पर्शिया आज एक ऐतिहासिक खेल माना जाता हो। प्रविष्टियों में काम टालना, दिशा बदलना, आत्मसंदेह, दूसरे रचनात्मक कामों की ओर आकर्षण और अधूरेपन की बेचैनी भी मौजूद है। यही कच्चापन पुस्तक को पारंपरिक मेकिंग ऑफ विवरण से अलग करता है। मैकनर ने मूल भाषा की तात्कालिकता, वर्तमान काल और युवा उम्र की असमान अभिव्यक्ति को काफी हद तक बनाए रखा है। बाद की टिप्पणियां संदर्भ देती हैं, पर पुरानी आवाज को पूरी तरह सुधार कर एक सुव्यवस्थित मिथक नहीं बनाती। इससे एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है। किसी सफल कृति का विचार बाद में अनिवार्य और स्पष्ट दिखाई दे सकता है, जबकि निर्माण के दौरान वह अनेक प्रतिस्पर्धी विकल्पों में से केवल एक अस्थिर संभावना होता है। पुस्तक इस अंतर को प्रत्यक्ष बनाती है। रचनाकारों के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि अनिश्चितता को केवल असफल योजना का संकेत नहीं मानना चाहिए। लगातार परीक्षण, विराम, संशोधन और संदेह अक्सर दीर्घ परियोजनाओं का सामान्य हिस्सा है। साथ ही डायरी यह भी दिखाती है कि ईमानदार आत्म दस्तावेजीकरण बाद में निर्णयों, प्राथमिकताओं और रचनात्मक आदतों को समझने का उपयोगी साधन बन सकता है। दूसरा, रोटोस्कोपिंग ने गति को खेल के अनुभव का केंद्र बनाया। प्रिंस ऑफ पर्शिया की पहचान उसके पात्र की असाधारण रूप से मानवीय दौड़, छलांग, गिरने और तलवारबाजी से बनी। पुस्तक बताती है कि यह प्रभाव केवल अधिक चित्र बनाने से नहीं आया। मैकनर ने अपने भाई डेविड की गतिविधियों को वीडियो पर रिकॉर्ड किया, चुने हुए फ्रेमों को संदर्भ बनाकर उन्हें ट्रेस किया और फिर उन्हें खेल के लिए डिजिटल रूप में डाला। इस प्रक्रिया को रोटोस्कोपिंग कहा जाता है। सीमित एप्पल टू हार्डवेयर पर यह श्रम साध्य रास्ता था, लेकिन इससे शरीर का वजन, गति का रुकना और छलांग की तैयारी जैसी सूक्ष्म बातें दिखाई दे सकीं। इस तकनीक का डिजाइन महत्व गहरा है। खेल में खिलाड़ी केवल बटन नहीं दबाता, वह पात्र की जड़ता और प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना सीखता है। यथार्थवादी गति, इसलिए सजावटी दृश्य गुण नहीं रहती, बल्कि नियंत्रण, जोखिम और समय निर्धारण को प्रभावित करती है। खासकर खतरनाक छलांगों, फंदों और तलवार के मुकाबलों में एनिमेशन खिलाड़ी को यह पट में देता है कि अगला कदम कब संभव है और कब देर हो चुकी है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि संदर्भ सामग्री का प्रयोग यथार्थ की नकल भर नहीं है। रिकॉर्ड किए गए शरीर को कम मेमोरी, छोटे स्प्राइट और खेल की पटनीता के अनुरूप बदलना पड़ता है। इस तरह रोटोस्कोपिंग एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। विश्वसनीय अनुभव के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन उपयोगी है, लेकिन उसे माध्यम की तकनीकी और इंटरैक्टिव जरूरतों के अनुसार संपादित करना अनिवार्य है। तीसरा, एप्पल टू की मेमोरी सीमा में डिजाइन और प्रोग्रामिंग का संयुक्त समाधान। पुस्तक आरंभिक घरेलू कंप्यूटर विकास की उस स्थिति को सामने लाती है, जिसमें तकनीकी सीमाएं डिजाइन से अलग विभाग नहीं थीं। एप्पल टू की मेमोरी, ग्राफिक्स और भंडारण की सीमाओं के भीतर मैकनर को हर दृश्य, चाल और खेल नियम के लिए समझौते करने पड़े। आज के विशाल उत्पादन संसाधनों की तुलना में यह वातावरण बहुत संकुचित था, पर इसी संकुचन ने प्रिंस ऑफ पर्शिया की कुछ यादगार विशेषताओं को आकार दिया। एक उल्लेखनीय उदाहरण शैडोमैन प्रतिद्वंद्वी है। उपलब्ध मेमोरी बढ़ाए बिना विरोधी पात्र जोड़ने के लिए मैकनर ने बाइट शिफ्टिंग जैसी प्रोग्रामिंग युक्ति का उपयोग किया। इसका अर्थ केवल तकनीकी बचत नहीं था, एक ही मूल संसाधन को बदले हुए रूप में प्रयोग करके खेल ने नायक के सामने उसका दर्पण जैसा प्रतिद्वंद्वी खड़ा किया। यहाँ कोड की संरचना, दृश्य प्रस्तुति और खेल की नाटकीयता एक दूसरे से जुड़ जाती है। मैकनर स्तर संपादक को खेल के साथ देने पर भी विचार करते हैं, लेकिन डिस्क स्थान और आधिकारिक स्तरों के अनुभव को लेकर चिंता के कारण इसे अंतिम रूप से शामिल नहीं किया। यह प्रसंग बताता है कि हर आकर्षक सुविधा सही उत्पाद निर्णय नहीं होती, सीमित क्षमता में प्राथमिकता तय करना जरूरी है। पुस्तक का व्यावहारिक सबक यह है कि बाधाओं को केवल रुकावट मानने के बजाय रचनात्मक ढांचे के रूप में पढ़ा जा सकता है। अच्छे समाधान तब बनते हैं जब तकनीकी किफायत, खिलाड़ी का अनुभव और परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक ही निर्णय में संतुलित हो। चौथा, प्रकाशक की भूमिका। रॉयल्टी व्यवस्था और विपणन की देर से मिली शक्ति। द मेकिंग ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया रचनात्मक स्वतंत्रता को रोमांटिक बनाने के बजाय उसके व्यावसायिक जोखिम भी दिखाती है। ब्रॉडरबंड के साथ मैकनर का समझौता ऐसा था जिसमें उन्हें अग्रिम या नियमित वेतन के बजाय बिक्री पर रॉयल्टी मिलनी थी। इससे संभावित लाभ बड़ा हो सकता था, लेकिन विकास के दौरान आर्थिक अनिश्चितता का बोझ मुख्यतः निर्माता पर रहा। प्रकाशक ने कार्यालय की जगह उपलब्ध कराई, फिर भी शुरुआती दौर में मैकनर को अपने काम की दिशा और गति काफी हद तक स्वयं संभालनी पड़ी। पुस्तक और उसके संदर्भ बताते हैं कि उत्कृष्ट समीक्षाएं अपने आप व्यापक बिक्री की गारंटी नहीं बनती। प्रिंस ऑफ पर्शिया को आरंभ में पर्याप्त विपणन समर्थन नहीं मिला और उसकी बिक्री लगभग एक वर्ष तक कमजोर रही। बाद में प्रचार संबंधी परिस्थितियां बदली, विभिन्न मंचों पर पहुंच बढ़ी और खेल को बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली। यह क्रम उत्पाद की गुणवत्ता और उसके बाजार तक पहुंचने के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। यह विषय स्वतंत्र डेवलपरों, लेखकों और छोटे रचनात्मक व्यवसायों के लिए विशेष उपयोगी है। अनुबंध को केवल प्रतिशत या स्वामित्व के आधार पर नहीं समझना चाहिए। अग्रिम धन, विकास जोखिम, प्रचार की जिम्मेदारी, वितरण मंचों तक पहुंच और निर्णय अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैकनर की डायरी किसी कानूनी मार्गदर्शिका का स्थान नहीं लेती, लेकिन वह साफ दिखाती है कि रचनात्मक नियंत्रण और व्यावसायिक सुरक्षा के बीच तनाव वास्तविक होता है। किसी कृति का भविष्य केवल उसके निर्माता की मेहनत पर निर्भर नहीं रहता। अंत में गेम लेखक और फिल्मकार बनने की दो आकांक्षाओं के बीच व्यक्तिगत संघर्ष। मैकनर की कहानी को केवल एक प्रोग्रामर की विजय के रूप में पढ़ना अधूरा होगा। डायरियों में वे खेलों के साथ फिल्म, पटकथा और निर्देशन की ओर भी गंभीरता से आकर्षित दिखाई देते हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया के विकास में सिनेमाई प्रभाव स्पष्ट है, जैसे रोमांचक साहसिक फिल्मों से प्रेरित तनाव, दृश्य गति और खतरे का अनुभव। फिर भी मैकनर स्वयं खेल उद्योग को हमेशा अपनी अंतिम मंजिल की तरह नहीं देखते। कई अवसरों पर उनका ध्यान पटकथाओं और फिल्म संबंधी योजनाओं की ओर जाता है। यह द्वंद्व पुस्तक को मानवीय गहराई देता है। बाहर से देखने पर सफल खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना सहज रणनीति लगता है। अंदर से निर्माता के लिए सफलता भी कभी कभी उस पहचान से अलग हो सकती है जिसे वह अपने लिए चाहता है। मैकनर के नोट्स दिखाते हैं कि प्रतिभा, बाजार की मांग और निजी महत्वाकांक्षा एक ही दिशा में चले, यह आवश्यक नहीं। प्रिंस ऑफ पर्शिया पूरा करने की प्रक्रिया इसलिए पेशेवर अनुशासन की परीक्षा भी है। पुस्तक के बाद के वर्षों में खेल की रिलीज, उसके प्रभाव और मैकनर की अन्य रुचियों का विस्तार आता है। कुछ पाठकों को यह हिस्सा निर्माण के मुख्य दौर से कम तीव्र लग सकता है, लेकिन यह सफलता के बाद की रिक्तता और विकल्पों को समझने में सहायक है। रचनात्मक पेशों में अगला निर्णय केवल उस काम पर आधारित नहीं होता जो सबसे अधिक सफल हुआ। वह व्यक्ति की दीर्घकालिक जिज्ञासा, जीवन शैली और अपने काम के अर्थ की समझ से भी बनता है। निष्कर्ष में यह पुस्तक लेट्रो गेमिंग के प्रशंसकों, गेम डिजाइनरों, एनिमेटरों, प्रोग्रामरों, स्वतंत्र रचनाकारों और रचनात्मक उद्योगों के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल चुके पाठकों को इसकी तकनीकी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिलेगी, लेकिन खेल से परिचित न होने पर भी पुस्तक का मूल्य बना रहता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि यह रचना को अंतिम उत्पाद के बजाय निर्णयों की लंबी श्रृंखला के रूप में समझने देती है। पाठक देख सकता है कि विश्वसनीय एनिमेशन के लिए प्रत्यक्ष संदर्भ कैसे काम आता है, हार्डवेयर सीमाएं डिजाइन को कैसे आकार देती है, और मजबूत कृति को भी प्रचार, वितरण तथा सही समय की जरूरत क्यों पड़ती है। समान श्रेणी की कई मेकिंग ऑफ पुस्तकों में परियोजना को पीछे मुड़कर व्यवस्थित चरणों और निश्चित उपलब्धियों में बांटा जाता है। मैकनर की पुस्तक का अंतर उसकी समकालीन डायरी आवाज है। इसमें बात की सफलता आरंभ से तय नहीं लगती, उलझन, भटकाव, आर्थिक चिंता और निजी महत्वाकांक्षा को हटाया नहीं गया है। नए संस्करण की टिप्पणियां आवश्यक संदर्भ देती है, जबकि मूल नोट्स अपनी तत्कालता बनाए रखते हैं। पाठक को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रिंस ऑफ पर्शिया के हर तकनीकी पहलू की औपचारिक पाठ्य पुस्तक नहीं है। बात का भाग खेल के निर्माण से आगे मैकनर के जीवन और करियर की ओर बढ़ता है। फिर भी यही व्यापकता इसे केवल विकास दस्तावेज से अधिक बनाती है। यह सीमित साधनों में बने एक प्रभावशाली खेल का इतिहास है और साथ ही उस व्यक्ति का ईमानदार रिकॉर्ड है जो उसे बनाते समय अपने रास्ते को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं था। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉर्डन मैकनर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।